नमस्कार, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं जनसत्ता पॉडकास्ट और मनोरंजन की दुनिया में क्या चल रहा है, जानते हैं इस बुलेटिन में। प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में बताया कि उन्हें बॉलीवुड में लोगों ने कॉर्नर कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में सेटल होने के बारे में भी बात की। इसे लेकर अब कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कंगना रनौत ने दावा किया है कि करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को बॉलीवुड में बैन कर दिया था, जिसके बाद उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। कंगना रनौत ने ट्विटर पर करण जौहर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रनौत ने फिल्म मेकर द्वारा आउटसाइडर्स को परेशान करने की बात कही है। दरअसल हाल ही में प्रियंका ने एक इंटरव्यू में किसी का नाम लिए बिना कहा कि वो बॉलीवुड में कॉर्नर महसूस कर रही थी। उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि लोग उन्हें फिल्मों में नहीं ले रहे थे। एक्ट्रेस ने कहा था कि इंडस्ट्री में चल रही राजनीति वो सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। इन सब बातों को लेकर कंगना ने ट्विटर पर लिखा, बॉलीवुड के बारे में @ प्रियंका चोपड़ा का यही कहना है कि लोगों ने उनके खिलाफ गैंग अप किया, उन्हें धमकाया और फिल्म उद्योग से बाहर कर दिया। एक सेल्फ मेड महिला को भारत छोड़ने पर मजबूर किया गया। हर कोई जानता है कि करण जौहर ने उसे बैन कर दिया था। ट्वीट की सीरीज में कंगना ने आगे लिखा, मीडिया ने करण जौहर के साथ मतभेदों के बारे में बड़े पैमाने पर लिखा क्योंकि शाहरुख और मूवी माफिया क्रुएला के साथ उनकी दोस्ती थी, जो हमेशा कमजोर बाहरी लोगों की तलाश में रहते थे। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा को इस हद तक परेशान किया कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। एक राजनीतिक विश्लेषक ने द बिग बैंग थ्योरी के एक एपिसोड को लेकर OTT के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उनका दावा है कि एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कानूनी नोटिस में राजनीतिक विश्लेषक मिथुन विजय कुमार ने स्ट्रीमर से सीजन 2 के पहले एपिसोड को हटाने के लिए कहा है, जिसमें कुणाल नायर द्वारा निभाए गए राज कुथरापल्ली के किरदार और शेल्डन कपूर की भूमिका निभाने वाले जिम पार्सन्स ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की तुलना करते हैं। लीगल नोटिस में कुमार ने कहा है कि कुणाल द्वारा की गई टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक है बल्कि मानहानिकारक भी है। उन्होंने नेटफ्लिक्स से इस एपिसोड को हटाने को कहा है। कुमार का कहना है कि इस तरह के कंटेंट या महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देने वाले सीन या डायलॉग को लेकर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ओडिया एक्ट्रेस और सिंगर रुचिस्मिता गुरु अपने रिश्तेदार के घर पर मृत पाई गई। जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस का शव एक कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। बताया ये भी जा रहा है कि परिवार ने एक्ट्रेस की आंखें डोनेट कर दी हैं। मृतका के परिजनों ने बलांगीर भीमा भोई मेडिकल कॉलेज में नेत्रदान किया है। रुचिस्मिता, जिन्होंने कुछ म्यूजिक एल्बम किए हैं, हाल ही में बलांगीर में अपने अंकल के घर गई थी, वहीं उन्होंने आत्महत्या की है। परिवार द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन बताया जा रहा है कि देर रात होने के कारण ऑटोप्सी नहीं हो पाई। पुलिस परिवार से सवाल जवाब कर रही है और इस संदिग्ध मौत के कारण का पता लगाने की कोशिश जारी है। एक्ट्रेस ने ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं आसपास के लोगों की माने तो परिवार में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद एक्ट्रेस ने आत्महत्या कर ली। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने खुद को एक शानदार तोहफा दिया है। शाहरुख खान को रविवार देर शाम रॉल्स रॉयस कलिनन ब्लैक बैच के साथ देखा गया। ये लग्जरी SUV है जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए से अधिक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार फिलहाल भारत की सबसे महंगी SUV है। गाड़ी के शोरूम की कीमत अनुमानित रूप से 8.20 करोड़ रुपए है। वहीं गाड़ी की ऑन रोड कीमत 10 करोड़ रुपए से भी अधिक है। ऑनलाइन वायरल हो रहे एक वीडियो में शाहरुख के 555 नंबर प्लेट वाली सफ़ेद लग्जरी कार को मन्नत से बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। ये नंबर शाहरुख खान का लकी नंबर है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि ये गाड़ी किंग खान की ही है। सिर्फ इस लग्जरी गाड़ी पर ही शाहरुख खान ने खर्च नहीं किया है। हाल ही में पठान की सफलता के बाद शाहरुख खान ने तब सुर्खियाँ बटोरी थी जब उन्हें 5 करोड़ रुपये की घड़ी में देखा गया। ब्लू कलर की ये घड़ी लग्जरी ब्रांड अडेमर्स पिगुएट रॉयल ओक परपेचुअल कैलेंडर वॉच की थी। बॉलीवुड एक्टर और फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। गदर के करीब 22 साल बाद फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है, ऐसे में दर्शक फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। हालांकि कमाल राशिद खान का कहना है कि फिल्म का कलेक्शन सिर्फ 15 करोड़ रुपए के आसपास ही होगा। कमाल राशिद खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्लीज नोट शारिक पटेल और जी टीम के मुताबिक फिल्म गदर 200 करोड़ रुपए का लाइफ टाइम थ्रेटिकल बिजनेस करेगी और मैं एक ब्लैंक पेपर पर लिख सकता हूं कि यह फिल्म 15 करोड़ का लाइफ टाइम बिजनेस करेगी। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदी फिल्म मेकिंग के बारे में कॉर्पोरेट स्टाफ की कितनी नॉलेज है। बता दें कि गदर 2 का अभी तक ना कोई टीजर रिलीज हुआ है और ना कोई ट्रेलर आया है, फिर भी केआरके ने फिल्म के लाइफ टाइम कलेक्शन के बारे में भविष्यवाणी कर दी है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए iJanSatta.com पर। ये पॉडकास्ट यहीं खत्म होता है, अगले बुलेटिन तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।